ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। कल गुजरात के भुज वायुसेना अड्डे पर उन्होंने कहा कि भारत इस हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म कर देगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संघर्ष विराम का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
श्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस कूटनीतिक पहल पर बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और तीनों सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। नई दिल्ली में कल नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत को सेना के तीनों अंगों, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। तमिलनाडु में प्रदेश भाजपा इकाई ने कल तेनकासी, तिरुपत्तूर, तुतुकुड़ी, वेल्लोर और थेनी जिलों में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैलियों का आयोजन किया। रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, पूर्व सैनिकों और युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने रक्षा बलों के गौरव और बलिदान का समर्थन करते हुए नारे लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी राम भद्राचार्य और उर्दू कवि तथा गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जागृत करता है। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की वृद्धि के साथ भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुमानित 6.4% की वृद्धि के साथ भारत की वर्ष 2026 तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश में करही और सगमा के बीच 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक महत्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के तहत प्रस्तावित क्वाड रेल लाइन 5.31 किलोमीटर लंबी होगी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। विश्व में IIFT के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन शिक्षा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। फुटबॉल में भारत ने कल अरुणाचल प्रदेश में मालदीव के खिलाफ 3-0 की शानदार जीत के साथ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।